وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سورة یاسین آیت نمبر 68 سے 83 آخری رکوع ہے آئیے اس کی مختصر سی وضاحت دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ آج ہم اس کو اس سوچ کے ساتھ سنیں گے کہ ابھی تک ہم نے سورة یاسین جتنی بھی پڑھی آج اس آخری رکوع میں کیا ہے اور پھر انشاءاللہ آج اینڈ پہ ہم دیکھیں گے کہ سورة یاسین کا پیغام کیا تھا اور آج عموماً لوگ اس کو کس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں کس طرح سے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو ہدایت کے لیے پڑھنے والا بنا دے شروع ہوتی آیت 68 وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں اوندا ہی کر دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں ذرا سا ایک جملہ ہے غور کیجیے جب جینے کا زیادہ موقع مل جاتا ہے تو جینے میں مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ یاسین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیوں کا ذکر کیا पिछले रुकू में आपने देखा होगा वमिन आयात ही, और कहीं जमीन की निशानियां कहीं कुछ, तो यहां बुढ़ापे को अल्लाह की कुदरत की निशानी बनाया गया। इंसान की जिंदगी के बहुत सारे मराहल हैं, शायद सबसे खूबसूरत मरहला बचपन का होता है। हर एक लाड देखता है, नखरे देखता है, हर एक खिदमत करने को तैयार होता है, लेकिन होते होते वो बचपन भी नहीं रहता और जवानी आने लगती है। आती भी जवानी ऐसे लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, कोई हमसा हो तो सामने आए। और जब जवानी आती है तो अमूमन मस्तियों में और बाद में फिर जिम्मेदारियों में गुजर जाती है। और जिसको आप कहते हैं कि जिंदगी पलक झपकते में गुजर गई, जवानी का अरसा अभी आके अभी जमता ही है कि कुछ ना कुछ बुढ़ापे के आसार शुरू होने लगते हैं। सबसे पहले इंसान को उस वक्त खौफ आता है जब बालों में एक सफ़ेद बाल नज़र आता है, फिर उसके बाद झुर्रियाँ, और फिर चेहरे के फीचर्स का उम्र के पोल खोलना, फिर हाथों के ऊपर झुर्रियों का पड़ना। बाजार में कितनी ही दवाइयाँ क्यों ना हों, कितनी ही क्रीमें क्यों ना हों, कितनी ही खालिस खुराक क्यों ना खा लें, बुढ़ापे को कोई रोक नहीं सका। अरबी का एक शायर है तो वो कहता है कि मैंने जब अपने बालों में एक सफ़ेद बाल देखा तो मैंने बुढ़ापे को मरहबा कहा, लेकिन अगर मुझे बुढ़ापे की तलखियों का पता होता तो मैं कभी उसको वेलकम ना करता। ये तो एक मुबालगा ही है ना, क्यों कि आप वेलकम करें कि ना करें, बुढ़ापा फिर भी आएगा। आज के दौर में इंसान जितना अपनी ज़ात को देखता है, जितना एक इंसान अपनी खुराक सेहत को देखता है, शायद ही कभी देखा हो। पूरे मॉल्स और बड़ी बड़ी दुकानें और बड़े बड़े स्टोर्स जो हैं वो किसको सर्व करते दिखते हैं, इस जिस्म को ही करते हैं ना। एंटी एजिंग क्रीमों के नाम आपने सुने होंगे, लेकिन आप देखिए कि फिर भी बुढ़ापा आता है। और यहाँ जिस बात का जिक्र है, वमन नुअम्मिर हो, हम उम्र देते हैं, यानी तुम अपनी खुराकों से अपनी कोशिशों से जवान नहीं रहते, तुम्हारी उम्र हमारे हाथ में। और अगर आप देखिए इस साइंस की तरक्की ने इतनी आगे तक की मंजिलें तय कर ली होती कि इंसान की उम्र बढ़ा दी होती तो फिर आज तो उम्रें बहुत लंबी होती। ये एक नुक्ता है या नुअम्मिर हो पे, कैसे आप देखते हैं कि पहले दौर में उम्रें लंबी होती थी। अभी तक जो रिकॉर्ड पे लंबी उम्र है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की है, 950 साल। और शायद वो एक मौजज़ा था, या शायद उस वक्त सभी की उम्रें लंबी होती होंगी। लेकिन आप कभी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़कर देखिए तो आखिरी उम्र तक ना सठियाए, ना बुड़बड़ाए और ना परेशान हुए। और सबसे बढ़ के बात जो बड़े अहम नुक्ते की बात है आज आपके लिए कि 1000 साल की उम्र के करीब फौत हुए ना, जिसमें से 950 साल तबलीग की, 50 साल शुरू के निकाल दीजिए, आखिरी दम तक अपने काम पे रहे, ये क्या बात है। उलमा कराम इस चीज़ पे बहुत गौर व फिक्र करते हैं, और नतीजा क्या है कि जो शख्स अल्लाह की दीन की खिदमत में लग जाता है ना, उसका बुढ़ापा बड़ा खूबसूरत होता है। ना वो सठियाता है, ना मजनू, ना दीवाना। और आप इस चीज़ को हजरत नूह से पीछे ले आइए, वो तो बहुत बात पहले की दौर की बात है। आज भी आप देखिए कि हम जब अपने असलाफ के हालात पढ़ते हैं ना, जो रिकॉर्ड पे हैं, लंबी भी उम्रें थी, अगर 60 थी, 70 थी, 80 थी, आखिरी दिन तक काम करते हुए होश हवास के साथ दुनिया से गए। इसके बरक्स आज क्या है, 40 तक भी अगर खैर से पहुंच जाए ना बीमारियों के बगैर तो खुशकिस्मती है, वरना ये भी मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, 30 तक की कुछ जिंदगी एंजॉय करता है, और अल्लाह माफ करे आज तो जवानियों में भी बीमारियां। 40 के बाद बीमारियां, शुगर, टेंशन, स्ट्रेस, फला फला फला, और उसके बाद फिर डॉक्टरों के चक्कर, अपॉइंटमेंट। बहुत कम लोग मैंने देखे हैं कि 50 से ऊपर होकर एक्टिव रहें, फिर उनकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती है, अब अपॉइंटमेंट, अब खाना, अब ये, अब फिजियो पे जा रहे हैं, अब उधर जा रहे हैं। और घर वालों के लिए भी एक इंसान बस ऐसे एक बोझ ही होता है। 60 साल का होकर अगर कोई अपने काम पे रहे तो लोग कहेंगे वाह अब्बा जी अभी तक दुकान पे जाते हैं, और 70-80 तो छोड़ दीजिए। लेकिन जो खबर यहाँ है वो बड़ी डराने वाली है, नुनक्किस खुफिल खल्क, ہم پلٹا دیتے ہیں، ساخت الٹا دیتے ہیں. نقصا، ایک ہوتا ہے نقص، قاف موٹا ہوتا ہے اور سواد ہوتا ہے، یہاں پتلی قاف ہے اور سین ہے. یعنی جب انسان کسی ایسی کیفیت میں ہو کہ جہاں سے چلا تھا وہیں آ جائے. فی الخل کی مراد کیا ہے؟ کہ بڑھاپے میں انسان کی حالت بچوں کی سی ہو جاتی ہے. آپ ذرا سا ایک پیج میں ایک لائن لگا لیجئے، بچہ بمقابل بوڑھا. پہلی بات ہے کہ بچہ چل نہیں سکتا، لیٹا رہتا ہے، تو بوڑھے بھی تو عموماً چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتے ہیں. دوسرا، بچے کو عموماً دوسرے اٹھاتے بٹھاتے، اگر انگلی پکڑ کے چلانا چاہیں تو سہارا دیتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بوڑھے بھی عموماً دوسروں کے سہارے کے محتاج ہو جاتے ہیں. انسان مل جائیں تو بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ، لیکن پھر کہیں ویل چیئر ہے تو کہیں سٹک ہے تو کہیں ریکلائنرز ہیں اور کہیں کچھ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ تیسرا فرق، تیسری سملیرٹی، کہ بچے کو عموماً دوسرے کھلاتے ہیں، اور اگر کبھی خود کھانے لگ جائے تو آدھا گراتا ہے اور آدھا کھاتا ہے. اسی طرح بوڑھوں کو بھی عموماً کھلانا پڑتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بچے عموماً اپنے بستروں میں، اپنے کپڑوں میں، اپنی ضروریات سے فارغ ہوتے ہیں، اسی لیے تو پیمپرز کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے بوڑھے بھی عموماً اپنی ان حاجات پہ قابو نہیں پا سکتے، اور نکل جاتا ان کے جسم سے گندگی بن کے وہ سب کچھ جس کو زندگی میں، جوانی میں کبھی انسان دوسرے کے سامنے کرنا تصور بھی نہیں اس کا کر سکتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بچے عموماً نہ سمجھے کی باتیں کرتے ہیں، یہ اگلا فرق ہے، یہ اگلی سملیرٹی ہے. تو بوڑھے کون سی سمجھ کی باتیں کرتے ہیں؟ پھر آپ دیکھیے کہ بچے عموماً ضد کرتے ہیں، تو بوڑھے بھی تو ضدی ہو جاتے ہیں. بچے عموماً ایک بات بار بار کرتے ہیں، تو بوڑھے بھی تو بات بار بار کرتے ہیں. پھر ایک سملیرٹی دیکھیے کہ بچے کی بات پہ عموماً لوگ ہنستے ہیں. آپ کی کوئی بات پہ کوئی ہنسے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ایک دم غصہ آئے گا، آپ کیوں ہنسے، کیا ہوا؟ لیکن آپ دیکھیے بوڑھوں کی باتوں پہ لوگ ہنستے ہیں. اچھا اماں آپ چپ کر جاؤ، اچھا ابا جی، لوگ کھل 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 کے ہنستے ہیں. غرض کے جس کمزوری کی حالت سے اس نے دنیا میں اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، اختتام پر وہ اسی حالت کو پہنچتا ہے. یہ ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلُونَ. عقل نہیں ہے، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہو اللہ کے بارے میں، اللہ کی اس کائنات کے بارے میں، کیا ان حالات کو دیکھ کر تمہیں ذرا سی بھی سمجھ نہیں آتی؟ اتفاق دیکھیے، شاید میں نے یہ آیت پڑھانی تھی آپ کو، مجھے اپنے اس ٹرپ میں جہاں سے رات کو واپس آئی ہوں ایک اولڈ ہوم کو وزٹ کرنے کا موقع ملا. میں آپ کو اپنے لفظوں میں بتا ہی نہیں سکتی کہ میں نے وہاں کیا دیکھا، میں نے وہاں کیا محسوس کیا. یعنی آنکھوں سے آنسو باہر گر جائے نا تو دل ہلکا ہوتا ہے، لیکن وہ آنسو جو آنکھوں سے نہیں دل کے راستے گرتے ہیں نا، وہ دل کو بوجھل کرتے ہیں. میرے فون میں دو تین ویڈیوز بھی ہیں جو میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکتی، جو منظر میں نے وہاں دیکھے. جس کو آپ اولڈ ہوم کہہ لیں یا پیار سے آپ نرسنگ ہوم کہہ لیں، اور جہاں لوگ اپنے پیاروں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، شاید ان کی حالت ہی ایسی ہو جاتی ہے کہ گھر میں وہ قابو میں ہی نہ رہے. اور جو بہکی باتیں، جو رونا اور دھونا، ہمارے عزیزوں میں کوئی ایک عزیز ہیں تو مجھے پتہ چلا کہ وہ وہاں ہیں، تو ایک محبت کے لیے بھی، اور ایک مجھے ہمیشہ ہی شوق ہوتا ہے کہ دیکھوں کیا ہے، اپنی عبرت کے لیے. یہ مجھے پتا تھا میں نے جا کے دکھی بہت ہونا، اور اس کے علاوہ ثواب بھی ہوتا ہے. تو میں نے کسی سے ریکویسٹ کی، خیر ہم دو تین لوگ گئے. باہر سے ایک عجیب سا ماحول لگ رہا تھا، خیر اندر گئے، ریسپشن پہ وہ پروٹوکول ہے، تو جو مجھے لے کر گئے ساتھی تو وہ جانتے تھے ان کا روم کون سا ہے، وہ اسی طرف چل پڑے. خیر جب گئے تو مجھے کہنے لگیں کہ ویسے وہ اپنے روم میں نہیں ہوں گے جن کو بھی ہم دیکھنے گئے تھے. کہنے لگی میں جب بھی آتی ہوں کبھی تو وہ اپنے روم میں نہیں ہوتے، ان کا دل نہیں لگتا، وہ چیختی ہیں جو بھی ہیں. وہ کہتی ہیں مجھے میرے کمرے میں نہیں آنا. تو سامنے ایک اوپر چڑھنے کے بعد جیسے لابی ٹائپ کا کامن روم ہوتا ہے، جہاں ٹی وی بڑے بڑے لگے ہوئے اور پورا ایک جیسے انہوں نے ایک فن کا انٹرٹینمنٹ کا اہتمام کیا. کہتی ہیں عموماً وہ ادھر ہوتی ہیں. خیر وہاں گئے، وہاں بھی نہیں تھی. खुद ही बताने लगी, लास्ट टाइम मैं इधर आई तो टीवी पे को गई, सॉन्ग्स लगे और वो सारे बूढ़े बैठ के गाने गा रहे थे। कुछ इस किस्म का वो ऐसे अजीबोगरीब सी हरकतें थी, और होश नहीं होता ना ऐसी उम्र में। खैर वहां से उतरे, वापस आए, नर्स को पूछा किधर है, फिर हमें नीचे भेजा फर्स्ट फ्लोर पे। तो जब हम अंदर घुसे थे ना उस होल्ड होम में, तो हम तो लेफ्ट राइट साइड पे मुड़े, तो लेफ्ट साइड से एक बहुत तेज म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी, जैसे लाइव कॉन्सर्ट टाइप होता है। तो मेरे जहन में क्या आया कि जहरे के बूढ़े लोग होते हैं समटाइम, तो कोई होश भी नहीं रहता, या मे भी यहाँ कोई ग्रुप विजिट करने आए वाला ना उसी बस, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डनरी आवाज़ थी। लेकिन खैर हमारा उधर से कोई ताल्लुक नहीं था, हम दूसरी तरफ चल पड़े। जब वापस आए तो इत्तेफाक देखिए कि वो नर्स हमें उन्हीं आवाज़ों की तरफ लेकर आई। और यकीन करें उसके बाद जो मैंने देखा मैं आपको बयान नहीं कर सकती। सारी उम्र के नमाजी, तहज्जुद गुजार, कभी जिनकी किसी ने आवाज़ नहीं सुनी होगी, जिनके यानी बुढ़ापा कैसी बुराई बुरी चीज़ है। वो एक बड़ा सा ऐसा कमरा था, कॉन्सर्ट था, एक लाइव बाबा बुड्ढा, उन्होंने यानी एंटरटेन, कहने लगे ये एक्टिविटी रूम है, हम अपने इन सारे बूढ़ों को एंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ करवाते हैं। तो एक माइक पे आदमी था, स्टेज नहीं था, ऐसी सीधी जगह पे यहाँ जैसे मैं बैठी हूँ, तो वो खड़ा होकर गाना गा रहा था, साथ एक पियानो था, वहाँ एक और बूढ़ी बैठी पियानो बजा रही थी, और पूरा हॉल बूढ़े बूढ़ियों से भरा हुआ था, और सारे बच्चों की तरह उनके साथ गा रहे। मैंने कहा यहाँ वो कभी नहीं हो सकते, मुझे पता है वो कितनी नेक और कितनी खूबसूरत खातून है। लेकिन यकीन करें जब हम गए तो उस नर्स ने हाथ इशारा किया अंदर आए, उसी बूढ़ों की लाइन में एक जगह वो पीछे बैठी, सब व्हील चेयर्स पे होते हैं, उनके जहन में थोड़ा सा खलल है, कभी किसी को पहचानते हैं कभी नहीं, लेकिन बस फिर जो उन्होंने रोना शुरू किया। खैर हमने कहा हम तो इधर नहीं रुकेंगे, उनको पकड़ा तो अंदर, हाय ये तो मशहूर है, यानी वो कुछ होश में कुछ बेहोशी में, मेरे कान गुनाहगार अपने आप को महसूस कर रहे थे, और इस वक्त मैं बोलते हुए अपने आप को गुनाहगार महसूस कर रही हूँ। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी कि बुढ़ापा इंसान की सारी जिंदगी का खुलासा होता है। फिर वापस हम उनके रूम में, फिर जो उनके साथ वक्त गुजारा, और जो उनकी बातें, और जो उनका रोना और उनका धोना, अल्लाह की बना, हर कमरे में से बूढ़ों के कराहने की आवाजें आ रही हैं। यानी उस पूरे ओल्ड होम में सिवाय नर्सों और टेक केयरर्स के, जो रिसेप्शन पे या शुरू रस्तों में दिखते हैं, सब बूढ़े हड्डियों की मुठियां, और दिल वहां ऐसे रहा जैसे वो मैरिनेटेड चिकन नहीं होता के अंदर सिरका और नमक मर्च लगी हुई है और गला हुआ दिल। और जहां जब हम उठने का नाम लें तो वो तो बच्चों की तरह रोएंची है, नहीं जाना, नहीं मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। बुढ़ापा इतनी बुरी चीज है। मैंने कहा हम कितने प्यार से दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमारे माँ बाप को कभी ना फौत करना, हाय हमारे माँ बाप को लंबी उम्र देना, लेकिन बास दफा ऐसी कैफियत होती है कि बच्चों के बस में ही नहीं रहता। फिर वो जो टेक केयरर थी साथ लड़की, जहर वो पूरा वक्त 24 घंटे शिफ्ट चेंज होती है, उनके साथ ही होता है कोई ना कोई, कहती सारा दिन इन लोगों का यही हाल है, शी स्क्रीम्स, चीखती हैं, रोते हैं, कभी कुछ, कभी बच्चों को याद, कभी बच्चे भी आते हैं, सब बहुत अच्छी फैमिली है, अच्छे नाइस लोग हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें गुम जाते हैं। और वो कहाँ है उनका जहन, अपनी जवानी पे अटका हुआ है। बेटा मिलने आए तो भाई है, अगर बेटी आ जाए मिलने तो वो बचपन की सहेली है, होश नहीं होती, होश और बेहोशी के बीच में। तो याद रखिए कि हमेशा एक दुआ मांगा करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआ में से एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका अन उरद्दु इला अर्ज़लिल उमर। ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ इस बात से कि मैं अर्ज़ल उमर की तरफ लौटा दी जाऊँ। और अर्ज़ल वही है जिसको रज़ील कहते हैं, नबियों की कौमों ने भी उनको रज़ील कहा था कि हम तो आपके पीछे राज़ीलू ना, अर्ज़ल लोगों को देखते हैं, यानी हकीर लोग। और यहाँ एक अपने लिए भी छोटी सी नसीहत लें कि अपने माँ बाप की कदर करें। आज अगर वो बुढ़ापे और जवानी के बीच में है ना, तो उनकी दुआएं ले लें। क्यों? इसलिए कि कल जब वो बूढ़े हो जाएंगे ना, तो हो सकता है उनको आपके नाम भी ना याद रहे, और वो बीच में जब उनका जरा सा होश है, वो मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, मेरे बेटे बड़े अच्छे हैं, मेरी बेटियां बड़ी अच्छी हैं, और वो नर्स भी बता रही थी, जब इनके बेटे मिलने आते हैं तो ऐसे चहचहाती हैं, खिलती हैं, जितनी अच्छे बच्चे हैं उनके, बहुत नाइस बच्चे हैं, लेकिन वो नहीं काबू में आ सकते, तो तभी उनके लिए कुछ अरेंज किया होगा ना। तो मैंने कहा इनको इसकी होश है, कहती होश है, सबको पहचानती है, लेकिन बीच में बहकी बहकी बातें करती है। तो अपने माँ बाप की कदर करें। आपको पता है कि ये तोहफा हमेशा नहीं रहता, और जब ये होता है हमारे पास, यानी जब हम जरा छोटे और माँ बाप जरा जवान होते हैं ना, तो हम कहते हैं बस इनको सता लो जितना सताना है, खपा लो जितना खपाना है। फिर जब हम जवान हो जाते हैं और वो जरा से माइल बाय बुढ़ापा होते हैं, तो हम कहते हैं हम बड़े अक्लमंद हैं, इनको समझ नहीं, अब्बा ऐसे, अम्मी ऐसी, फलां ऐसा, ये ऐसा, सास ऐसी, ससुर ऐसी। याद रखिए, इसमें माँ बाप के साथ सास ससुर भी आते हैं, ले लें दुआएं, कर लें खिदमत, ये मौका हमेशा नहीं रहेगा। फिर बाद में आप रोएंगे, फिर आप याद करेंगे अम्मा अच्छी होती थी, चलो जैसी भी थी अच्छी तो थी। अल्लाह ताला हमारे बुढ़ापे को अच्छा करे, क्योंकि एंड अच्छा तो सब अच्छा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आमाल अपने खात्मों के साथ है, यही है यहाँ फला याकिलून की बात, अकल को सामने रख कर ये बातें करो। और इस शऊर के साथ हम सब एक बार कहते हैं कि रब्बे रहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। बहुत तकलीफ दे अपने माँ बाप को इस हाल में देखना। मैं जब उनको देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि मुझे इनसे मोहब्बत बहुत है, और वैसे भी बुजुर्ग होने के नाते तो सबसे ही होती है, लेकिन इनके बच्चे इनको इस हाल में कैसे देखते होंगे, ये मेरा क्वेश्चन था पूरा वक्त। और मैं अपने माँ बाप के लिए दुआ कर रही थी कि अल्लाह मैं कभी उनको इस हाल में ना देखूँ, इज्जत के साथ दुनिया में रख उनको, ऐसी जिंदगी ना हो कि लोग हम पे रहम खाने लग जाए, हमें कहानियां ना बनाना, हमें अफसाने ना बनाना, हमारे साथ ऐसा मामला ना करना कि लोग हम पे तरस खाने लग जाए।
ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون